शांति। भारत की रत्न प्रसूता माटी ने अनेक रत्नों को जन्म दिया, उन्हीं रत्नों में से एक रत्न पंजाब की धरनी पर जन्म लिया और वो रत्न है आदरणीय निर्भय भाई जी, जिनका हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। आप नैनी में 9 वर्ष तक इलेक्ट्रॉन इंजीनियर के पद पर कार्य कर चुके हैं। आपने नेवी में कार्य करते हुए सन 1959 में ब्रह्मा कुमारी में वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट में एक विद्यार्थी के रूप में सत्य की खोज करते हुए संपर्क में आए। सन 1963 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी जनरल तथा ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। यूनाइटेड नेशन में सन 1982 में आपने सेकेंड स्पेशल सेशन ऑन डिजायरमेंट का प्रतिनिधित्व किया, जहां विशेष रूप से आपसे यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जनरल जेवीआर पेरिस डी क्यूलर ने सौजन्य भेंट कर आपका सम्मान किया। आपने विभिन्न देशों की यात्राएं कर ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया, साथ ही प्रदर्शनी आर्ट गैलरी तथा विभिन्न डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं कला के माध्यम से ईश्वरीय संदेश देने के प्रेरणा स्रोत बने। आदरणीय भाई साहब, बाप समान स्थिति कैसे बने, इस विषय पर हम सभी को बहुत सुंदर क्लास कराएंगे। इसके पूर्व एक बहुत छोटी सी बच्ची जो एक भाषण करना चाहती है, 1 मिनट का।
ओम शांति। अधर्निया दीदी जी, वहाँ मेरे बड़े भाई और बहनों, आप सबका बाबा के घर में दिल से स्वागत करती हूँ। बाबा, आप इस छी दुनिया को मोती वाली दुनिया बनाने इस धरा पर आए हैं। वहाँ अच्छे अच्छे फूल वाले झूले होंगे, अच्छे अच्छे गार्डन होंगे, सोने के महल होंगे, एरोप्लेन होंगे, हम भी उस एरोप्लेन को चलाएंगे। आप भी उस दुनिया में जाना चाहोगे, वहाँ जाने के लिए अपनी सारी ब्राइयाँ ही छोड़नी पड़ेंगी। ओम शांति। धन्यवाद।
ओम शांति। छोटी बच्ची ने आप सबका स्वागत भी किया और स्वर्ग में चलने का निमंत्रण भी दिया। एक बहुत वर्ष पहले मधुबन निवासियों ने एक ड्रामा तैयार किया था, जिसका शीर्षक था स्वर्ग में एक सीट खाली है। भिन्न भिन्न लोगों को निमंत्रण देने के लिए नारद जी ने एक एक से जब बात की, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं, तो एक भी तैयार नहीं हुआ था। संसार के अंदर संसारी लोग इतने लिप्त हैं, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। किसी को अपना बिजनेस फैलाना है, किसी को बच्चों की शादियां करानी है, फिर पोतरे देखने हैं, पोतरियां देखनी हैं, किसी ने अपना आश्रम बनाना है, फिर बना करके चेले उनके काफी होने चाहिए, और उसके बाद फिर जब उनकी महिमा हो जाए उसके बाद वो चलने के लिए तैयार होंगे। एक बुजुर्ग माता, वो उसको नारद जी ने सोचा, भाई ये तो बेचारी सारा उम्र इसने निकाल दिया, अभी इनकी टर्न है। लेकिन वो माता जी भी नारद जी के पीछे डंडा लेके पड़ी कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, कई छोटे छोटे नौजवान यहां पर हैं, उनको नहीं ले जाता स्वर्ग, मुझे क्यों ले जाना है। तो अभी आपसे मैं पूछता हूं, वो बच्ची का भाषण सुनने के बाद स्वर्ग में चलने के लिए कोई तैयार है? जरा हाथ तो खड़ा करो। अरे वाह, ताली बजाओ अपने लिए। लेकिन बाबा ने एक बात मुरलियों के द्वारा भी सुनाई है, स्वर्ग में सब सुख होंगे, क्या नहीं होगा? बाबा नहीं होगा। और आज आप किसके लिए यहां पधारे हैं? बाबा से मिलने के लिए। ईश्वरी जीवन, इसका कुछ सुख अपना ही है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? गोप गोपियों से। कौन सी गोप गोपियां? कौन सी गोप गोपियां इस हाल में जो बैठी हैं? तो स्वर्ग में सुख तो बहुत हैं, लेकिन वहां अपने अपने महलों में सुखी रहते हैं, लेकिन परमात्मा पिता का मिलन और उनसे जो सारे कल्प में एक ही बार मुलाकात होती है, वो वहां पर नहीं मिलता है। इसलिए बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग को कौन सा नाम दिया है? सत्युग है, सुनहरा युग, और त्रेता है चांदी का युग, सिल्वर एज, द्वापर है कॉपर एज, कलयुग है आयरन एज, डायमंड एज कौन सी है? वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग का अंतिम समय और आने वाले सत्युग की शुभ प्रभात, दोनों का संगम, ऐसे महान पुरुषोत्तम संगम युग में हम आप सभी बच्चे इस समय अति इंद्रिय सुख प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। लेकिन सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब पहले तो अच्छी तरह से परिचित हो जाएं। परिचित होने के साथ साथ निश्चय बुद्धि हो जाएं कि सचमुच हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। जब तक ये निश्चय नहीं होता है, अपने आप को सदा अभी भी कलयुग में ही मानते हैं, तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं ले सकेंगे। जो इस निश्चय में रहते हैं कि हमारा इस समय अलौकिक नया जन्म हुआ है, पहले देह अभिमान के कारण लौकिक माता पिता खानदान उन बातों को लेकर के चलते थे, लेकिन जब से बाबा का परिचय मिला, उनके साथ अपने संबंध का परिचय मिला और बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि आप मेरे अनादि अविनाशी रूहानी संतान हो। उसके बाद इस निश्चय के आधार से हमारा दृष्टिकोण चेंज हो गया। आत्मिक स्वरूप से हर एक को देख करके बल शरीर में है तो भी अलौकिक संबंध में आ जाते हैं। देह भान का संबंध नहीं रहता है और उसके फल स्वरूप सबसे बड़ा परिवर्तन जो आता है वो आता है कि अपने जीवन में रूहानियत आ जाती है, ईश्वरी गुण आ जाते हैं, दिव्य गुण आ जाते हैं। और अगर ये निश्चय नहीं हो और इसके अनुकूल अपनी दृष्टि और वृत्ति ना हो तो वो अलौकिकता नहीं आती है। अतीन्द्रिय सुख तभी प्राप्त होता है जब अलौकिक जीवन जीने की कला आ जाए। उसके लिए विशेष थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ता है, थोड़ा पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। वैसे तो जब जन्म होता है बच्चे का तो ऑटोमेटिकली वारस बन जाते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है कि आप बाबा के बच्चे हो, उस नाते से स्वर्ग के मालिक तो जरूर बनेंगे लेकिन स्वर्ग के मालिक में भी विश्व महाराजन भी बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस भी बनेंगे, साहूकार प्रजा भी बनेंगे। गरीब शब्द वहां नहीं होता है। तो आपसे आज एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे साकार बाबा ने जब दिव्य दृष्टि के द्वारा नई दुनिया का साक्षात्कार किया, शिव बाबा को पहचाना, शिव बाबा के महावाक्य उनके कानों में पड़े और उनके फल स्वरूप ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को सब समर्पित किया। कल एक भाई मेरे से पूछ रहे थे, बाबा ने जो समर्पण पत्र लिखा वो कौन सी तारीख को लिखा था। भले बाबा को अनुभव 1936 में हुआ लेकिन जो बाबा ने अपनी प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से रियलाइज करके ये निश्चय जब उनको हुआ अच्छी तरह से कि अभी ये कलयुग का अंतिम समय है, परिवर्तन का समय है और उसके लिए उनको निमित्त बनना है, तो 18 जनवरी 1937 को बाबा ने 8 बहनों माताओं का ट्रस्ट जब बनाया उस समय बाबा ने अपने हस्तों से लाल पेंसिल से ओम मंडली माता के नाम पर पत्र लिखा कि मैं आज लखीराज, बाबा का नाम लौकिक में वैसे दादा लेखराज कहते थे पर बाबा हमेशा अपने आप को लखीराज, माताओं के भारत की माताएं, माताओं के चरणों में अपना तन मन धन सब स्वाहा करता हूं, समर्पित करता हूं। और वो डेट थी 18 जनवरी 1937। کیا راز تھا اس میں؟ شیو بابا کی شری مت کے آدھار سے بابا کو ہیرے جواہرات جو تھے وہ سب پتھر نظر آنے لگے. ایشوری گیان کے جو گیان رتن وہ سچے رتن نظر آنے لگے. وشے آتا ہے میرے ہاتھ میں لکھا ہوا بابا کو فالو کرنے کی بات، بابا کے قدم پر قدم رکھنے کی بات، پر اس کے لیے تو بہت ہمت چاہیے. اتنی ہمت ہے سبھی میں؟ سمرپن ہونے کا سنکلپ آتا ہے کبھی کسی کو؟ ایک سوا لاکھ نظر آ رہا ہے جو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جو سمرپن ہونا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ تو کھڑا کرو. ہونا چاہتے ہیں ابھی تو بہت اچھی سنکھیا نظر آتی. بابا نے بڑا اچھا سسٹم بنا دیا کہ کہاں پر بھی رہ کر کے پہلی بات ہے کہ بابا کو پہچانو، سوئم کو پہچانو، اپنے بھاگے کو پہچانو، اپنے بھوشیہ کو جانو، اس نشچے سے پھر اپنا پرشارتھ کرو، اپنے میں پریورتن لاؤ. بابا کے بننے سے وارث تو بن جائیں گے لیکن وارثوں میں بھی کوئی وشو مہارانی بنے، کوئی پرنس پرنسس بنے، کوئی ساہوکار پرجا بنے، وہ آپ کے اوپر ہے. بابا کو فالو کرنا ہے تو دل سے پورا سمرپت ہونا ضروری ہے، دل سے. اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، دل بڑا مضبوط چاہیے، نرم دل نہیں چاہیے، کمزور دل نہیں چاہیے. اور اس کے اندر کیا راز بھرا ہوا ہے؟ بابا نے کہا آپ اپنے گرست ویوہار میں رہو، یہ نہیں کہا کہ گرست ویوہار چھوڑ کر کے سنیاسی بن کر کے آشرم میں آ کر کے سیوا کرو، نہیں، ایسا نہیں کہا. جو جہاں پر ہیں بابا نے جیسے اپنے گھر میں ستسنگ شروع کیا، اوم منڈلی جس کا نام پہلے پہلے پڑا، اس کا کارن کیا تھا؟ پروچن ہو، بابا کی مرلی سنائی جائے، لیکن اس کے بعد میڈیٹیشن کے ٹائم پر کوئی اور میوزک نہیں ہوتا تھا لیکن اوم کا اچارن ہوتا تھا. جانکی دادی کبھی کبھی اس طرح سے وہ اوم کا اچارن کرتی ہیں، لیکن اس اوم کے اچارن میں اتنی شکتی تھی. کئی بھائی بہنیں جو اس ستسنگ میں ہوتے تھے اوم کی دھونی سنتے سنتے ٹرانس میں چلے جاتے تھے. پرم دھام کا ساکھیاتکار، ستیوگی سورگ کا ساکھیاتکار، وشو پریورتن کا ساکھیاتکار. آج کی مرلی میں جیسے بابا نے کہا سب کو واپس چلنا ہے، وہ سب آتمائیں کیسے واپس جاتی ہیں اس کا ساکشاتکار، اور کئی پرکار کے، کیونکہ ایک دن کی بات نہیں ہے، پھر تو انیک 14 ورش جو اتنے بھائی بہنیں ساتھ میں رہے تو بابا ان کو دیوے درشتی کے دوارا ایک طرف شکشا بھی دیتے تھے، دوسری طرف بہلاتے بھی. बहुत कुछ देखा उन्होंने, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ धारण किया, जिसके फल स्वरूप 14 वर्ष की तपस्या के बाद वही हमारी बड़ी दादियां हम सबको ज्ञान देने के निमित्त बन गई। तो पहली बात है कि बाबा को फॉलो करने के लिए एक शिव बाबा में निश्चय चाहिए, एक परम पिता परमात्मा, वो हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, और हमें वापस परम धाम में ले जाने वाले और फिर स्वर्ग में सतयुग में राज करने के लिए भेजने वाले वो सच्चे सतगुरु हैं। ये निश्चय चाहिए, जिनको ये पक्का निश्चय है वो हाथ खड़ा करें जरा, कि दूसरा कोई नहीं। अभी हमें चाहे वो कितनी यात्राएं कराए, कितने कुंभ के मेले में ले जाए, वो हमको वहां नहीं पहुंचा सकते, एक शिव बाबा पहुंचा सकते। ठीक है, तो एक पहला निश्चय ये चाहिए, जिनका ये एक निश्चय पक्का है बाकी बातें उनके लिए बड़ी सहज हो जाएंगी। दूसरा निश्चय, बाबा ने जब भविष्य का साक्षात्कार किया उसमें मुख्य बात क्या देखी कि भविष्य की जितने सतयुगी देवी देवताएं हैं वो स्वाभाविक रूप से बहुत पावन आत्मिक दृष्टि रखते हैं। ऐसी पावन आत्मिक दृष्टि रखने का अभ्यास हमारे अंदर होना चाहिए, इसलिए बाबा ने बहुत बहुत इस बात पे समय प्रति समय मुरली के द्वारा ध्यान खिंचवाया है कि जब आप मन में ओम शांति कहते हैं, मुख से ओम शांति कहते हैं, तो स्वयं को अच्छी तरह से स्मृति में लाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, ज्योति स्वरूप हूं। आज की मुरली अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या बताया मुरली में, स्टार लाइक, दिव्य ज्योति स्वरूप, सितारे की तरह। ऐसा अपने में अभ्यास चाहिए, वो बिना अभ्यास के सहज नहीं होता है, और वो अभ्यास जिसका पक्का हो जाता है उसको सभी भाई बहनों के ऊपर आत्मिक दृष्टि रखना बड़ा सहज लगता है। ब्रह्मा बाबा को हम प्रैक्टिकल में जब मिलते थे, देखते थे, तो बाबा कभी भी पहले आवाज में नहीं आते थे। जब भी पहली बार हम मिलने आए या उसके बाद जितनी बार भी मिले, बाबा पहले आत्मा को दृष्टि दे करके अच्छी तरह से शक्तिशाली बनाते थे, और जब अच्छी तरह से शक्तिशाली दृष्टि दे करके आप समान बना देते, फिर उस लेवल से बाबा बात करते थे। नहीं तो बाबा करें बात इतनी ऊंचाई की और हम बच्चे हों किसी और विचारों में, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी तो रिसेप्शन भी नहीं होगी, कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर कहेंगे बाबा से मिले तो सही लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, बाबा ने साकार में ये प्रैक्टिस कराई, कभी भी किसी से मिलना है, बाबा के पास बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं आती थी मिलने के लिए, बहुत बड़े बड़े लोग भी आते थे, गांव के लोग भी आते थे, बिजनेस पर्सन्स भी आते थे, कोई भी आए, बंदेली माताएं भी आती थी, मुझे तो बहुत सारे सीन वो याद आते हैं। आप में कोई बंदेली माताएं आई हुई हैं, जरा हाथ खड़ा करें, बंदेली जो बंधन में हो, है थोड़ी देखने में आती। एक माता जी बॉम्बे की बात सुना रहा हूं, मैं पहले भी कभी कभी क्लास में सुनाई है। बॉम्बे में एक माता जी बंदेली थी, बहुत बंधन में। बाबा बॉम्बे में आए हुए थे, खरीदारी जैसे करने निकलते हैं, उसी बहाने निकल करके 11:30 बजे बाबा के पास आकर के दिन में पहुंची। शील दादी को कहा, मैं जब बाबा के सामने बैठूं ना तो ये एक मैं रिकॉर्ड लेके आई हूं, वो जरूर आप बजाना। आज तो आपने दूसरा गीत सुना, लेकिन ये गीत कुछ उससे अलग है। तो बाबा आकर के सामने संदली पर बैठे, माता जी सामने बैठी थी, शील दादी ने वो गीत बजाया, बंधेलियों वाला गीत था। बहुत प्यार भी था उसमें और उलैना भी था। गीत के शब्द थे, बहुत दिनों पे मिले हो प्रभु प्यारे, गिन गिन लूंगी बदले सारे। गीत बजता जाए, माता जी के नैन गीले, आंसू बहते जाए, बाबा के भी नैन गीले हो गए। लेकिन एक लगन, चाहे बंधन में थी, उसका निश्चय इतना पक्का, और उस निश्चय के फल स्वरूप उसकी लगन इतनी अच्छी, किसी ना किसी तरीके से मुरली जरूर वो पढ़ेंगी या सुनेंगी। बाबा की याद तो बंदेलियों के लिए, बाबा कहता है कि उनको तो सबसे ज्यादा याद रहती है, और बाबा बहुत उनको प्यार करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आप सभी बंधन में पड़ जाएं फिर बाबा हमको प्यार करें, ऐसा भी नहीं है। तो निश्चय उसके बाद है कि रेगुलरिटी चाहिए। हम आत्माएं 63 जन्म से, सत्युग त्रेता की बात नहीं है, वहां तो बड़े आनंद से रहे, सुख से रहे, सब कुछ हुआ, द्वापर से लेकर के 63 जन्म 5 विकारों ने धीरे 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 आत्मा की शक्तियां सभी खत्म कर दी, मोहताज बना दिया, गरीब बना दिया, और इतने तक प्रार्थनाएं ही करते रह गए, प्राप्ति ना हुई। इतनी कमजोरियां आ गई कि सब कुछ जानते हुए, एक बड़ी विचित्र बात देखी, हर एक आत्मा के अंदर राइट और रॉन्ग की समझ है, पर वो सदा राइटियस बात करे वो नहीं हो पाती है। उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत मनोबल चाहिए, और वो मनोबल बाबा ने पक्का कराया कि जिन बच्चों को ये निश्चय हो जाता है कि इस समय स्वयं बाप इस धरा पर आकर के हमें इतना योग्य बना रहा, इतना लायक बना रहा है, उनकी श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बन जाते हैं, आत्मा स्वच्छ बन जाती है। और जितनी स्वच्छता अंदर आती है, जितनी पावनता अंदर आती है, उतना मनोबल बढ़ता है। इसलिए आने से ही थोड़े टाइम के अंदर ही ब्रह्मा कुमारी बहने बहुत युक्ति से रक्षाबंधन के टाइम पर राखी बांध देती है और भाई खासकर हमारे जो वीआईपीज आईपीज भाई होते वो समझते हैं भाई बहनें आई हैं तो इनको कुछ दक्षिणा तो देनी चाहिए। शुरू शुरू में हमारी मनोहर दादी दूसरी दादियां वो किसी को राखी बांधती थी तो कहती थी देखो हमको 5 खोटे पैसे आपसे चाहिए, तो हर एक अपनी जेब देखने लगता था कि खोटे पैसे कहां मेरी जेब में है। फिर समझाती थी कि जिसके लिए आपने जन्म जन्मांतर प्रार्थनाएं की हैं, हे भगवान हे वाहेगुरु इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाना, वो 5 खोटे पैसे वो निकालो अपनी जेब से। दूसरे पैसों की बात नहीं है लेकिन वो खोटे पैसे वो 5 विकार जिसके लिए प्रार्थनाएं भी की, जो आप खुद महसूस करते हो कि ये मेरे जीवन में सुख नहीं देते हैं, अल्पकाल सुख होता है सदाकाल का दुख होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने जब ये स्वयं रियलाइज किया तो उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय किया, प्रतिज्ञा की, प्रण किया, कुछ भी हो जाए। बाबा की एक डायलॉग की डायरी है, बड़ी पुरानी डायरी 1932 की, उसमें बहुत अच्छी डायलॉग आत्मा और देह अभिमान की। आत्मा राजा के रूप में, देह अभिमान को या 5 विकारों रूपी जो भी कमी कहो उसको वजीर के रूप में आपस में बात चलती है, लेकिन उसको बाबा ने मन के रूप में लिया हुआ है जो डायरी में लिखा है। उसमें कहा देखो हे मन वजीर, मैंने एक राजा को देखा है, उसका वजीर उसके हुक्म पर चलता है, तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है, बहुत उसके कारण मुझे दुख अब सहन करने पड़े हैं, अब मैं जैसे कहूं वैसे करना है। और मन वजीर आगे से उत्तर देता है हे राजन मैंने जो कुछ भी किया आपके सुख के लिए किया। फिर राजन कहते हैं नहीं, वो अल्पकाल का सुख तूने दे करके मुझे बहुत बहुत दुखों में धकेल दिया, आज से मैं जो तुम्हें कहूं वो तुम्हें करना है। बड़ा सुंदर डायलॉग छोटी सी डायरी में। हम लोगों को भी बाबा फिर कहता है आप अपने मन से डायलॉग करो, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आपके हैं, आप मालिक हैं उसके। मन को मन मना भव करो, मन मेरे साथ लगाओ, परमात्मा पिता कहते हैं, और कुछ नहीं करो, मन मेरे साथ लगाओ। उसका भाव क्या है? जब ये मन में आ जाएगा कि सर्वशक्तिवान बाप के संग में मैं उनके कंपनी में हूं, उनके संग में हूं, तो उसका रंग अवश्य चढ़ेगा। श्रेष्ठ संस्कार बन जाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं, और अगर श्रेष्ठ संस्कार नहीं होंगे फिर मन को वो नेगेटिव संस्कार फीड करते रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, खींचातान में रहेंगे, بابا کے سامنے ہم بچے کبھی کبھی آتے تھے، من میں کوئی کھینچا تان چلتی ہو کسی کے، وہ فٹ سے چہرے پہ آ جاتی ہے. کہا جاتا ہے فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. تو بابا درشتی دیتے فٹ سے سمجھ جاتے تھے اس کے من میں کچھ ٹسل چل رہی ہے. پوچھتے تھے، بچے کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تو بابا نے جیسے ہی یہ شبد بولے فٹ سے بابا کے ساتھ من لگا، پھر منہ پہ تھوڑا مسکان آ جائے گی، اچھا لگے گا. لیکن کبھی کبھی کوئی زیادہ ہی سوچ میں ہوتے تھے، کوئی بہن ایسے ہوں گی تو کہیں گے بچی کیا بات ہے، تمہارے ساسو نے شریر چھوڑ دیا کیا؟ اگر شریر چھوڑ دیا تو بھی کہتے ہیں اماں مرے تو بھی حلوہ کھاؤ، ساسو مرے تو بھی حلوہ کھاؤ. تو تم حلوہ کھاؤ نا، یہ ایسا شکل کیوں کہ ایسی بنا کے بیٹھی ہو؟ لیکن بابا کو ہمیشہ وہ بھوشیہ کے دیوی دیوتا من میں رہتے تھے کہ ہم راج یوگ بل سے ایسا راجاؤں کا مہاراجہ جب بنتے ہیں، وشو پر راج کرتے ہیں، اس سمے ہمارا من کتنا نرمل ہے، کتنا شریشٹھ ہے، اور اس کے فل سوروپ چہرہ کبھی اداس نہیں ہوتا، چہرہ سدا ہی پھولوں کی طرح مسکراتا رہتا ہے. اس کی نشانی ہے کوئی ہمارے سامنے بھکتی مارگ کی؟ کسی کو یاد ہے؟ بھکتی مارگ میں بہت سپشٹ نشانی ہے. کوئی ایسا چتر دیکھتے ہو جو سدا مسکراتا نظر آتا ہے؟ ہے کسی کو یاد؟ شری کرشن کا چتر دیکھا ہے؟ دیکھتے ہیں شری کرشن کو کبھی روتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کبھی سیریس دیکھتے ہیں؟ سدا مسکراتا ہے. شری نارائن کا بچپن کا سوروپ شری کرشن ہے. اور بابا کہتا ہے آپ بچے راج یوگ کے دوارا نر سے شری نارائن بننے والے ہو، ناری سے شری لکشمی بننے والے ہو. تو بچپن میں کیا بنیں گے؟ سیدھا ہی تو نہیں نارائن اور شری لکشمی بن جائیں گے. بچپن میں شری رادھے شری کرشن بنیں گے، ایسے مسکرانے والے بنیں گے. تو وہ مسکراہٹ سدا کس آدھار سے ہوگی جب اس سمے سنگم یوگ پر ایسا من نرمل ہو جائے، ایسی شریشت بھاوناؤں میں رہے، ایسا سندر اس کے اندر وچار آئیں اپنے کلیان، سو کلیان، وشو کلیان کے لیے، وہ من سدا خوشنما رہے گا، نرمل رہے گا، اڑتی کلا کا آٹومیٹکلی انبھو کرے گا. سبھی کیا چاہتے ہیں، کون سی کلا میں رہنا چاہتے ہیں؟ اڑتی کلا میں. تو بابا کو ہمیشہ، ساکار بابا کو بہت امنگ رہتا تھا کہ ہر دن کچھ نیا انبھو ہونا چاہیے، میڈیٹیشن میں بھی کچھ نیا انبھو ہونا چاہیے، مرلی سنے تو اس میں بھی کچھ نوینتا آپ کو ملنی چاہیے، اور دھارناؤں میں بھی سدا امنگ الاس چاہیے. ایسے لکش رکھ کر کے جب پرشارتھ کرتے ہیں تو بابا کی سری مت کو فالو کرنا بڑا سہج لگتا ہے. اور دیکھا گیا برہما بابا نے قدم قدم پر بابا کی شری مت ہمیشہ فالو کی، اس میں کبھی بھی 19-20 نہیں کیا. کتنا بھی بابا کو سامنا بھی کرنا پڑا سماج کا شروع میں، دقتیں بھی آئیں، کافی کچھ آئیں، لیکن بابا نے ہمیشہ ایک بل، ایک بھروسے، اسی نشچے سے اپنا پرشارتھ بھی کیا، पुरुषार्थ कराया भी बच्चों को, और साथ में जो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कार्य दिया था कि अपने तन मन धन से, मन वाणी कर्म से भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व में शांति स्थापन करनी है, वो हम बच्चों को भी वही बाबा हमेशा कहते थे, आप बच्चों को अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। लेकिन भारत स्वर्ग बनने से पहले पहले क्या होना चाहिए? सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले अपने आप को देखना पड़ता है। इसलिए बाबा उन दिनों में, साकार बाबा, हम बच्चों को बहुत मेहनत कराते थे इस बात की। क्या मेहनत कराते थे? सोने से पहले अपना चार्ट लिखने का, 7-8 बातें कहते थे सवेरे उठने के बारे में, मन वाणी कर्म के द्वारा सारे दिन में क्या स्थिति रही, किसी आत्मा का कल्याण करने के निमित्त बने, मन में कोई नेगेटिव बातें तो नहीं आई, वो सब जब नोट करेंगे तो अटेंशन रहेगा, अटेंशन रहेगा तो उसको मन से निकाल देंगे। ज्ञान की बातें कौन सी मन में अच्छी आई, सेवा का कौन सा नया प्लान बनाया, पत्र भी बाबा ऐसे लिखते थे, हम लिखेंगे बाबा इनको हमने कोर्स कराया, ये किया वो किया, बच्चे ये तो सब ठीक है और नया क्या किया, कोई नवीनता चाहिए बाबा को, और बाबा खुद मंथन करके कोई ना कोई नए चित्र, कोई ना कोई नए प्लान, बहुत बातें बाबा ने सिखाई। और उसमें सबसे नंबर वन बात जो मुझे याद रहती है, जो आज बहुत अच्छी तरह से हमारे भिन्न भिन्न वर्गों के भाई बहने बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं, खास थी वर्गीकरण के हिसाब से, जो हर एक एसोसिएशन के बड़े होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, उन सब की लिस्ट लेकर के उन सब को निमंत्रण दो, एग्जीबिशन याद रखते हो उसके लिए निमंत्रण दे करके सबको बुलाओ, प्रोग्राम होते हैं उसमें उनको बुलाओ। इस तरह से बाबा ने खास कि अगर बड़ों की सेवा करेंगे तो छोटे ऑटोमेटिकली उनका भी कल्याण हो जाएगा, इस तरह से साकार बाबा की जो बातें सामने आती, ब्रह्मा बाबा की, एक तरफ अपने कल्याण के लिए ज्ञान और योग के ऊपर पूरा ध्यान, दूसरी तरफ फिर धारणा और सेवा। बिना धारणा के सेवा नहीं होती है। अगर हम दूसरों को ज्ञान की बात सुनाएं और स्वयं में धारणा नहीं होगी तो क्या होगा? ऊपर ऊपर से शब्द बोलेंगे उसमें बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, और शक्ति नहीं होगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। फिर कहेंगे हमने इतने लोगों को ज्ञान दिया, कोई एक भी नहीं आता है सेंटर पे, कैसे आएगा? इसलिए सबसे बड़ी सेवा है कथनी और करनी एक समान हो जाए। इसके ऊपर जितना अटेंशन रहता है उतना आप देखेंगे बहुत अच्छी सर्विस होती है। घर को स्वर्ग बना के रखना है। खासकर माताओं बहनों या भाइयों को मैं कहूं, बच्चों को कभी भी डांटना नहीं है। छोटे बच्चों को कभी कभी प्यार में ही डांटते हैं, लेकिन मुख से शब्द ऐसे निकलते हैं, ये बड़ा शैतान है, जैसा बोलेंगे वो वैसा बनता जाएगा। नहीं, बाबा हमेशा ऊंची दृष्टि से देखते थे, ऊंचे शब्दों से, ऊंचे اونچی بات کہہ کر کے شہزادی ادھر آؤ، ارے شہزادے ادھر آؤ، اس طرح سے. تو بابا نے جس طرح سے ہم بچوں کو سکھایا ہے، اگر ہم ان باتوں کو تھوڑا پریکٹیکل میں، لوکک میں، پریواروں کے اندر بھی اگر یوز کریں تو بہت بہت پریورتن ہو سکتا ہے سارے وایو منڈل کا. اور دوسرا ہے، بابا نے سکھایا، مما نے بھی سکھایا. ایسا نہیں کہ صرف بابا، لیکن مما، دادیاں، سبھی نے بہت اچھی باتیں سکھائی. نارملی لوگ کہتے ہیں اپنے سے بڑے جو ہیں ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کا آدر کرو، جو اب بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو پیار دو. لیکن جو سمان ہیں اس کے لیے کسی کے پاس یہ نہیں رہتا ہے کہ ان کا کیا کریں. تو کیا ہوتا ہے اس کے کارن؟ آپ دیکھیں گے جو سمانتا میں ہوں گے ان کا آپس میں سدا جھگڑا چلتا رہتا. مما نے کہا نہیں، بڑوں کو بھی سنمان دو، جو آپ کے سمان ہیں ان کو بھی سنمان دو، جو چھوٹے ہیں ان کو بھی سنمان دو. کسی کو بلاتی تھیں تو نام کے ساتھ جی ضرور لگاتی تھی. ہم کہتے تھے مما نہیں، صرف اتنا ہی بولو، نرویر نہیں. مما کی اپنی دھارنا. تو بابا سے، مما سے، بابا ہمیشہ مرلی میں بھی کہتے ہیں بچے فالو فادر اینڈ مدر. کیوں؟ بابا اور مما نے بہت گہرائی سے سبھی دیویہ مولیوں پر اپنی دھارنا بنائی، بچوں کو اتنا سنمان دیا. آپ روز مرلی میں، مرلی سننے کے بعد، پہلے تو مرلی سے اچھی طرح سے بابا اتنا گیان رتنوں سے ہم لوگوں کو مالا مال کر دیتا ہے، اور لاسٹ میں ایک لائن ہوتی ہے، میٹھے میٹھے سکیل دے بچوں کو یاد پیار اور گڈ مارننگ، پھر روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے. روز سنتے ہیں نا. کبھی کسی نے سوچا بھی اس کا کارن کیا ہے؟ بابا روز روز کیوں اتنا ایک ہی بات کہہ رہا ہے، میٹھے میٹھے سکیل دے بچوں کو، کارن کیا ہے؟ بابا نے اپنی پکی دھارنا بنائی کہ ان کو میٹھا میٹھا کہہ کر کے میٹھا بنا دینا ہے مجھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اگر ہم اور کچھ نہیں تو بابا کا یاد پیاری سمرتی میں رکھیں نا، تو کبھی بھی کرودھ نہیں آئے گا آپ کو. تو ہم ہیں ہی بابا کے میٹھے میٹھے بچے، کرودھ کیسے کر سکتے؟ اس لیے بابا بار بار اس بات کا دھیان کھچواتے تھے، بچے روز سویرے اور شام دونوں ٹائم مرلی کا ادھیان کرو، مرلی سنو بھی، پڑھو بھی، اور ہو سکے تو کسی کے ساتھ شیئر بھی کرو کہ آج بابا نے کتنی اچھی اچھی باتیں سنائی. تو آپ کو وہ سمرتی بھی رہے گی، پریکٹیکل لائف میں بھی آئیں گی باتیں، باپ سمان بن جائیں گے، مما سمان بن جائیں گے، دادی سمان بن جائیں گے. تو آج شام کو سبھی بھائی بہنیں کس لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ بابا سے ملنے. بابا سے ملنے بابا کے بے حد گھر میں آئے ہیں. تو بے حد کا سکھ پانے کے لیے آئے ہیں، بے حد کا. جب بابا کا آہوان کرتے ہیں، بس پکا من میں کر لو آج بابا سے بہت پیار کی درشٹی بھی پانی ہے، स्वाभाविक स्वरूप में बाप समान बनना है, लक्ष्य ऐसा रखना। फिर देखो कितना मजा आएगा बाबा की वाणी सुनने में, और जो भी वाइब्रेशन उस समय का है, जो प्रकंपन होते हैं वो बहुत हमें ऊंचा उठा देते हैं। ऐसे लगेगा कि हम इस संसार में नहीं है, हम तो जैसे सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है, तो हम बच्चे भी अव्यक्त स्वरूप में आ जाते हैं। जितना अव्यक्त स्वरूप में रहेंगे उतना बाबा के मिलन का अति इंद्रिय सुख प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे, और वो अनुभव आपके साथ सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेगा, कहीं पर भी रहेंगे वो स्मृति आपको हमेशा उड़ती कला का अनुभव कराती रहेगी। ठीक है, कोई को कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो आज शाम को अच्छी तरह से इसी लक्ष्य से कि बाबा के समान बनना है, फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता होकर के मिलन करना है बाबा के साथ। ठीक है, हाँ जी। भाई इनको जरा माइक देना। भाई प्रश्न पूछना चाहते हैं सबकी तरफ से, अब देखें क्या पूछते हैं। बोलिए। डायरी जो लिखते थे तो उस समय खोज में थे, अभी ज्ञान नहीं था, बाद में ज्ञान मिला, 1936 में मिला। वो तो थोड़ा थोड़ा शास्त्रों से हो जाता है। ओके, अच्छा भाई अभी क्या करेंगे, चलना है, उड़ना है, तो सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे, नहीं तो झुटका खाओगे तो फिर दूसरों को भी आसपास में उसका वाइब्रेशन जाएगा, इसलिए पीठ सीधी रखो, मुस्कुराओ थोड़ा, क्योंकि जब अच्छा कार्य करते हैं तो खुशी होती है। और हम क्या करने जा रहे हैं पता है आपको, बाबा के वतन में जा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में पहले जाना है, फिर परम धाम में जाना है, और आत्मा को बाप समान अनुभव करके सारे विश्व को पावन बनाने के लिए अपने प्रकंपन देने हैं। इतना महान कार्य करने के लिए हम लोग बैठे हैं, हॉल में सिर्फ नहीं बैठे हो, लेकिन हॉल से ऊपर वतन में, फिर वतन से परमधाम में चलना है, और फिर वहां से शुभ संकल्प से सारे विश्व को, तीनों लोकों को ये वाइब्रेशन देना है। आप सोचेंगे तीनों लोकों को क्यों, क्योंकि यहां से थोड़ी ना मिसाइल्स अपनी, ये क्या कहते हैं, रॉकेट्स ऊपर जाती हैं, वहां भी कचरा फैला के आ जाती हैं, उसको भी तो शुद्ध करना जरूरी है। चांद तक भी पहुंच गए, उसको भी पहले दाग शायद नहीं थे इतने जितने अब लग गए होंगे, तो इसलिए पांचों तत्वों को भी पावन बनाना है, सभी आत्माओं को भी प्रेरणा देनी है, सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए भी भावना रखनी है, तो इसलिए बाबा ने कहा सबको मिला के बस मेरे पास आ जाओ, और वहां से वो लाइट और माइट स्वयं में भी भरो और सबको भी दो। तो अभी बिल्कुल एक ही संकल्प, मैं चैतन्य ستارہ برکوٹی میں نواس کر رہا ہوں. من بدھی سے اویکت فرشتہ بن فرشتہ باپ کے پاس سکشم وطن میں بابا کے سنگ میں سکشم وطن کا انبھو کروں. لائٹ سوروپ فرشتہ سوروپ میں ستھت چاندنی رات کے سمان ایسے وطن کی لائٹ میں الوکک لائٹ میں میں الوکک فرشتہ اویکت باپ دادا کے سنگ نین ملاقات کر رہا ہوں. بابا کو دیکھتے من خوش ہو رہا ہے. کیا سوبھاگیہ میرا ایسا سکھد انبھو کرنے کا وشیش انبھو بابا چلیں پھر یہاں سے اوپر آپ کے سنگ سکشم وطن سے بھی اوپر دیوے ستارے بن کر پرم دھام نواسی شیو بابا کے سنگ میں چمکتے ہوئے تاروں کے روپ میں اپنے سرو شکتی سوروپ میں استھت سرو شکتیوان پتا کے لائٹ کی اور مائٹ کی کرنوں میں باپ سمان بن کر چمکتے ہوئے ہیروں کے سمان میں سرو شکتی سوروپ
کا शिव शक्ति तेना की रणभेरी अब फिर बजती है।